एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद प्रभावशाली उपन्यास की, अमरीकी लेखिका के गिबन्स का पहला नॉवल एलन फॉस्टर। ये 1987 में आया था और आते ही मतलब इसने काफी हलचल मचा दी थी।
हाँ बिल्कुल। के गिबन्स, जिनका जन्म 1960 में नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, वो समकालीन दक्षिणी अमेरिकी साहित्य की एक बहुत ही अहम आवाज मानी जाती हैं।
और कहते हैं कि उनके अपने बचपन के जो अनुभव थे वो भी काफी चुनौतीपूर्ण रहे। कुछ पारिवारिक त्रासदियां भी हुई तो उसकी छाप उनके लिखने में साफ दिखती है।
जी बिल्कुल। और एलन फॉस्टर उनका पहला ही उपन्यास था और इसी से उन्हें पहचान मिली। इसे कई अवार्ड्स मिले, जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सू कॉफमैन प्राइज,
अर्नेस्ट हेमिंग्वे फाउंडेशन से भी विशेष प्रशस्ति मिली थी इसे।
हाँ, और फिर बाद में जब ओपरा बुक क्लब में इसे चुना गया तब तो ये लाखों पाठकों तक पहुंच गया।
अच्छा, तो ये कहानी है किस बारे में, इसकी शैली क्या है?
ये एक बिल्डिंग्स रोमान है, मतलब एक
कमिंग ऑफ एज स्टोरी जिसे कहते हैं, किसी किरदार की बचपन से बड़े होने का सफर।
बिल्कुल। लेकिन इसमें, जैसा आपने कहा, दक्षिणी साहित्य की बात है तो सदर्न गॉथिक के तत्व भी हैं।
सदर्न गॉथिक यानी वो कहानियां जो अमेरिकी साउथ के माहौल में रची जाती हैं और अक्सर वहां के समाज की कुछ अजीब, थोड़ी डरावनी या जो टूटी हुई सच्चाइयां हैं।
हाँ, बिगड़े हुए किरदार, रहस्यमय घटनाएं, वो सब। तो ये उपन्यास बहुत ही गंभीर विषयों को छूता है। बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, उपेक्षा है, परिवार कैसे बिखर जाते हैं, नस्लवाद।
लेकिन ये सब एक बच्ची की नजरों से दिखाया गया है और अंत में ये मानवीय जज्बे की, लचीलेपन की एक असाधारण कहानी बन जाती है।
बिल्कुल।
तो आज हम एलन की कहानी पर ही ध्यान देंगे। 1970s का दशक, ग्रामीण नॉर्थ कैरोलिना और एक बच्ची की तलाश एक सुरक्षित प्यार भरे घर की। बड़ी दर्दनाक कहानी है लेकिन हिम्मत ना हारने वाली। तो चलिए शुरू करते।
के तरीके सोचती थी।
ओह, पहली लाइन।
हाँ, पहली लाइन। और बस इसी एक पंक्ति से अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम बचपन की कहानी नहीं होने वाली। यह हमें सीधे एलन की जिंदगी की जो बेरहम हकीकत है उसमें फेंक देती है।
तो क्या है वो हकीकत, कैसी है उसकी शुरुआती जिंदगी?
एलन अपने शराबी हिंसक पिता और एक बीमार बहुत कमजोर माँ के साथ रहती है। माँ को दिल की बीमारी है जो पिता के बुरे बर्ताव से और बिगड़ जाती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। एलन को लगता है कि ये आत्महत्या थी।
मतलब पिता की क्रूरता का सीधा नतीजा?
हाँ, और माँ के जाने के बाद एलन पूरी तरह से अपने पिता के रहमोकरम पर है। वो घर अब मतलब ना कोई देखभाल है, हिंसा है और गहरा अकेलापन। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उसे एक बड़े की तरह घर चलाना पड़ रहा है।
जैसे कि?
जैसे पिता से पैसे छिपाकर रखना ताकि खाने का इंतजाम हो सके, खुद को पिता के गुस्से से, उसके अजीब और खतरनाक मिजाज से बचाना।
बाप रे, ये तो बहुत ही दिल दहलाने वाली शुरुआत है। और यहीं पर एलन का जो चरित्र है वो असाधारण लगता है ना?
बिल्कुल।
इतना सब झेलने के बाद भी उसमें गजब का लचीलापन है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। वो यथार्थवादी है, चीजों को जैसी हैं वैसी देखती है और सबसे बड़ी बात, वो खुद को सिर्फ एक बेचारी, एक विक्टिम मानने से इनकार करती है।
हाँ, उसकी नजरें बहुत तेज हैं। वो अपने आसपास के बड़ों को लगातार देखती रहती है, परखती रहती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा, किससे खतरा है।
किस पर भरोसा किया जा सकता है, ये जैसे जीने के लिए जरूरी हो गया उसके लिए।
बिल्कुल, आत्मरक्षा की एक सहज वृत्ति बन जाती है।
और इस सबके पीछे उसकी एक ही सबसे गहरी इच्छा क्या है?
वो खुद ही बार बार कहती है, मुझे हमेशा से बस एक परिवार चाहिए था, एक सुरक्षित प्यार करने वाला घर।
ये कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है, एक बुनियादी मानवीय जरूरत है।
हाँ, लेकिन उसके लिए ये जीने मरने का सवाल बन जाती है। तो कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो सिर्फ उस भयानक घर में जिंदा रहना नहीं है,
बल्कि सक्रिय रूप से एक नया परिवार खोजना है।
हाँ, और ये एक अहम सवाल उठाता है, क्या एक बच्चा इतनी मुश्किल हालात में फंसा हुआ वाकई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है?
और एलन की कहानी यही दिखाती है, वो इंतजार नहीं कर रही कि कोई उसे बचाएगा, वो अपनी मुक्ति की लड़ाई में खुद की योद्धा है।
बिल्कुल। और ये लड़ाई उसे कई पड़ावों से गुजारती है। पिता के साथ रहना तो मतलब असहनीय होता जाता है। उसे ना सिर्फ घर संभालना है बल्कि बीमार पिता की देखभाल भी करनी पड़ती है।
और कहानी में जिक्र है कि उसे यौन शोषण के प्रयासों का भी सामना करना पड़ता है।
हाँ, उसकी हताशा इतनी बढ़ जाती है कि वो खेत में काम करने वाले एक मजदूर को पैसे देकर अपने पिता को मारने तक की कोशिश करती है।
एक बच्ची, सोचिए ऐसी बेबसी।
आखिरकार पिता को उसके दोस्त ले जाते हैं और कुछ समय बाद एन्यूरिज्म से उसकी मौत हो जाती है। एलन के लिए ये दुख का पल नहीं है,
नहीं बल्कि एक गहरी ठंडी राहत का पल है, जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो।
बिल्कुल। इसके बाद उसे उसकी नानी के पास यानी माँ की माँ के पास भेज दिया जाता है। शायद थोड़ी उम्मीद बनती है कि अब कुछ सहारा मिलेगा।
लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ क्रूरता का एक अलग ही रूप उसका इंतजार कर रहा है।
हाँ, नानी बहुत ही ठंडी, कड़वी और जैसे बदले की भावना से भरी हुई है। वो अपनी बेटी की मौत के लिए कहीं ना कहीं एलन को ही जिम्मेदार मानती है
और उसे सजा देती है।
हाँ, खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करवाना और प्यार या अपनेपन का तो सवाल ही नहीं। वो घर भी पिछले घर जैसा ही ठंडा और बेरंग है।
इसी दौरान उसकी दोस्ती स्टारलेटा से गहरी होती है ना?
जी, स्टारलेटा एक अश्वेत लड़की है और स्टारलेटा और उसका परिवार एलन को बिना शर्त दया और खाना देते हैं, जो उसकी नानी के घर के बर्ताव से एकदम उलट है।
तो स्टारलेटा के परिवार की ये अच्छाई एलन के मन में बैठे नस्लवाद को भी चुनौती देती होगी, वो नस्लवाद जो उसने शायद अपने समाज से अनजाने में सीख लिया था।
हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर मुश्किलों का सिलसिला भी थमा नहीं है। कुछ समय बाद नानी भी बीमार पड़ती हैं और मर जाती हैं,
और एलन एक बार फिर बेघर अकेली।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लगता है मुझे। यहाँ परिवार की जो हमारी पारंपरिक सोच है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ हैं, वो पूरी तरह बिखरती दिखती है।
सही बात है, एलन के लिए तो उसके अपने खून के रिश्तेदार ही उसके सबसे बड़े दुख और शोषण का कारण बनते हैं, पहले पिता फिर नानी।
गिबन्स यहाँ बहुत तीखी टिप्पणी कर रही हैं कि पारिवारिक रिश्ते अपने आप में प्यार और सुरक्षा की गारंटी नहीं होते।
और फिर एलन का वो अनोखा लचीलापन देखिए, नानी की मौत के बाद वो क्या करती है, वो किसी को पैसे देकर उसकी लाश की तस्वीर खिंचवाती है।
तस्वीर क्यों?
सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वो सच में मर गई है, कि वो वापस नहीं आएगी। वो कहती भी है, मैंने अपने पैसे वसूल कर लिए हैं, मैं उसके हिलते डुलते चित्र को अपने दिमाग में याद रखने के लिए नहीं रखूंगी। ओ माय गॉड, ये कितना कठोर लेकिन कितना यथार्थवादी तरीका है ट्रॉमा से निपटने का, भावनाओं से ज्यादा सबूत पर यकीन करना।
हाँ, अपने अतीत के भूतों से पीछा छुड़ाने का उसका अपना तरीका है, और ये घटना फिर से उस विरोधाभास को दिखाती है, रिश्तेदारों की निष्ठुरता और बाहरी लोगों जैसे स्टारलेटा के परिवार की निस्वार्थ दया।
सही कहा। इसके बाद कहानी में थोड़ी देर के लिए उनीत की किरण आती है, जब वो अपनी आर्ट टीचर जूलिया,
हाँ जूलिया, और उसके हिप्पी पति रॉय के साथ रहने लगती है। और ये पहली बार है जब एलन को एक सामान्य प्यार भरा, मतलब एक बौद्धिक रूप से जागरूक माहौल मिलता है।
जूलिया उसकी कला को पहचानती है, उसे सम्मान देती है, स्नेह देती है। एलन को पहली बार लगता है कि शायद उसे घर मिल गया, स्थिरता, गर्माहट, सच्ची देखभाल।
हाँ, वो पल बहुत सुकून देने वाले हैं पढ़ने में भी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं।
क्यों, क्या होता है?
उसकी एक और रिश्तेदार हैं चाची नेडीन, जो पहले कभी सामने नहीं आई थी, वो कस्टडी का केस कर देती है।
अरे,
और एक अजीब सा कानूनी फैसला होता है जिसमें एलन की पैतृक दादी, जिसने भी पहले कोई रुचि नहीं दिखाई थी, केस जीत जाती है
और एलन को जूलिया और रॉय के प्यार भरे घर से छीन लिया जाता है।
हाँ, ये उसके लिए एक और दिल तोड़ने वाला झटका है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम भी उसे फेल कर रहा है बार बार।
उसका अगला पड़ाव कहाँ होता है?
उसका अगला ठिकाना बनता है चाची नेडीन और उसकी बिगड़ैल ईर्ष्यालु बेटी डोरा का घर। यहाँ शारीरिक शोषण तो नहीं है, लेकिन भावनात्मक शोषण, वो अपनी चरम सीमा पर है।
किस तरह का भावनात्मक शोषण?
उदासीनता की क्रूरता। मतलब नेडीन और डोरा अपने व्यवहार से ये साफ कर देते हैं कि एलन उनके जीवन में एक अनचाहा बोझ है, एक शर्मिंदगी है, उनके साफ सुथरे दिखावे पर एक दाग। इस भावनात्मक अकेलेपन का सबसे बुरा पल आता है क्रिसमस की सुबह, जहां डोरा को महंगे तोहफों से लाद दिया जाता है।
वहीं एलन को तोहफे में मिलते हैं सिर्फ कुछ लिफाफे।
हाँ, ताकि वो अपनी दादी को चिट्ठियां लिख सके। एक साफ संदेश था कि तुम्हें जल्दी यहां से भी निकाल दिया जाएगा।
ये तो अंतिम अस्वीकृति हुई।
बिल्कुल, और यही वो पल है जो एलन के अंदर एक निर्णायक बदलाव लाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि कोई मसीहा, कोई बड़ा उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद ही कुछ करना होगा।
हाँ, ये क्रिसमस वाला सीन बहुत पावरफुल है, और इसी पूरी यात्रा के दौरान वो नस्लवाद वाला मुद्दा भी धीरे धीरे और साफ होता जाता है, जैसा आपने पहले कहा था।
हाँ,
शुरुआत में एलन अपने समाज से सीखी हुए नस्लवादी सोच दिखाती है, वो स्टारलेटा के परिवार की मदद तो लेती है पर मन ही मन खुद को बेहतर समझती है
जी।
लेकिन धीरे धीरे अपने कड़वे अनुभवों से सीखते हुए वो इस जहर से मुक्त होना शुरू करती है। वो स्टारलेटा के परिवार की सच्ची अच्छाई और अपने गोरे रिश्तेदारों की जो नैतिक बदसूरती है उसके बीच का गहरा फर्क पहचानने लगती है।
ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, ये एलेन के नैतिक विकास का एक बहुत अहम पड़ाव है।
बिल्कुल, और साथ ही ये जो वयस्क दुनिया है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी नाकामी भी लगातार सामने आती रहती है। परिवार, रिश्तेदार, टीचर, सोशल वर्क, यहाँ तक कि कानून।
हाँ, कानून भी उसे जूलिया के प्यार भरे घर से निकालकर नेडीन के ठंडे माहौल में भेज देता है।
उपन्यास बहुत खामोशी से लेकिन मजबूती से उन सभी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जिनका काम बच्चों की हिफाजत करना होता है।
सही बात है।
और इसी निराशा और तलाश के बीच एलन के मन में एक आदर्श घर की तस्वीर बनने लगती है, शहर में रहने वाली एक दयालु पालक माँ, फॉस्टर मदर की छवि।
हाँ, जिसे उसने चर्च में देखा था। वो महिला जो अपने बच्चों की देखभाल ठीक से करती दिखती है, वो एलन के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है, एक मंजिल जिसे उसे पाना है।
तो क्रिसमस की सुबह वाली घटना के बाद एलन वो फैसला लेती है जो कहानी का रुख बदल देता है। उसे एहसास हो जाता है कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा,
उसे खुद ही अपनी नाव खेनी होगी।
वो उन पैसों का इस्तेमाल करती है जो उसने इतने समय से बचा कर रखे थे। वो पैसे जो उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कंट्रोल और आजादी का प्रतीक बन चुके थे।
बिल्कुल, वो अपना थोड़ा सा सामान बांधती है और अकेले ही शहर में उस पालक माँ के घर की तरफ चल पड़ती है जिसकी छवि उसके मन में बसी हुई थी।
और फिर आता है उपन्यास का शायद सबसे यादगार, सबसे शक्तिशाली पल।
हाँ, एक 11 साल की लड़की पूरी हिम्मत और इरादे के साथ एक अजनबी दरवाजे पर दस्तक देती है।
जब दरवाजा खुलता है तो वो घोषणा करती है कि वो वहाँ रहने आई है।
हाँ, और वो अपने बचाए हुए पैसे उस महिला के सामने रखती है और जैसे जैसे खुद को गोद लेने का अनुरोध करती है।
ये उसकी अपनी इच्छा शक्ति का, अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने का चरम बिंदु है। कितना अविश्वसनीय कदम है ये।
अविश्वसनीय भी और उतना ही हिम्मत वाला भी। ये पल दिखाता है कि मुश्किल हालात इंसान से, खासकर बच्चों से, कितनी असाधारण हिम्मत निकलवा सकते हैं।
वो सिर्फ शिकार नहीं बनी रहती, वो अपनी कहानी की हीरोइन बन जाती है। और वो पैसे देना, ये भी कितना सिंबॉलिक है। वो भीख नहीं मांग रही, वो अपनी देखभाल के लिए पेमेंट करने को तैयार है, वो अपनी कीमत समझती है।
बिल्कुल, और चमत्कार होता है, वो महिला जिसे एलन बाद में अपनी नई माँ कहती है, वो बिना ज्यादा सवाल जवाब किए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घर के अंदर बुला लेती है।
शायद वो एलन की आंखों में उसकी जरूरत और उसकी हिम्मत पढ़ लेती है।
हाँ, शायद वो उसे स्वीकार कर लेती है।
उपन्यास का बाकी हिस्सा फिर एलन के नए जीवन के बारे में है।
जी,
आखिरकार उसे वो सब कुछ मिलता है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
एक साफ बिस्तर, अच्छा खाना, स्कूल जाने का मौका और सबसे बढ़कर एक स्थिर प्यार करने वाली अभिभावक।
वो इस नए सुरक्षित माहौल में खिलने लगती है।
हाँ, वो दोस्त बनाती है, पढ़ती है, अतीत के जख्म और यादें अब भी हैं, जाहिर है वो इतनी आसानी से नहीं जाते,
लेकिन अब उसके पास उनसे लड़ने की ताकत और सहारा है।
बिल्कुल, कहानी का अंत एक बहुत ही गहरे और सिंबॉलिक सीन के साथ होता है जो उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है।
वो क्या है?
एलन अपनी दोस्त स्टारलेटा को वीकेंड बिताने के लिए अपने नए घर पर बुलाती है। वो अपने घर को बहुत ध्यान से सजाती संवारती है, मानो दुनिया को दिखाना चाहती हो कि देखो, अब मेरा अपना एक ठिकाना है। जब स्टारलेटा आती है, एलन अपने मन में बसे नस्लवाद के जो आखिरी अवशेष हैं उन्हें भी मिटा देती है। वो पूरी तरह से बिना किसी हिचक के अपनी दोस्त को गले लगाती है, उसके साथ अपना बिस्तर, अपना खाना और अपना नया जीवन शेयर करती है।
वाओ, ये तो उसके अतीत की नफरत, उपेक्षा और पूर्वाग्रहों से उसकी पूरी मुक्ति का प्रतीक हुआ।
बिल्कुल, वो अब सिर्फ एलन नहीं है जो अपने दुखद अतीत से पहचानी जाती थी, उसने खुद को एक नया नाम और एक नई पहचान दी है। जैसा वो अंत में कहती है, मेरा एक नया नाम है, मैं एलन फॉस्टर हूँ और ये मेरा परिवार है।
वो एलन फॉस्टर है, एक लड़की जिसने अपना परिवार खुद चुना, खुद बनाया और घर तक का अपना रास्ता खुद ढूंढा।
क्या कमाल की कहानी है।
वाकई, और के गिबन्स की जो लिखने की शैली है वो इसे और भी असरदार बनाती है। फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी एलन की अपनी आवाज में कहानी कहना,
इतना सच्चा और जीवंत है।
वो आवाज एक साथ मासूम भी है और उम्र से पहले समझदार हो गई बच्ची की भी।
भाषा सरल सीधी है, कई बार बच्चों जैसी ग्रामर की गलतियां भी हैं जो उसे और असली बनाती हैं। इससे एक पावरफुल ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती है। एलन अक्सर भयानक घटनाओं का जिक्र ऐसे करती है जैसे वे आम बात हो,
या वो उनका पूरा मतलब समझ ही न रही हो, जिससे पढ़ने वाले पर उनका असर और भी गहरा होता है।
और उपन्यास की जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती।
हाँ, एलन अपने नए सुरक्षित घर से अतीत की घटनाओं को याद करती है।
इससे पाठक को शुरू से ही ये पता रहता है कि अंत में एलन सुरक्षित है। ये तकनीक कहानी को सिर्फ दर्द और पीड़ा का बयान होने से बचाती है और उसे मुश्किलों से लड़ने और जीतने की एक शक्तिशाली कहानी बना देती है। हाँ, ये जानकर के अंत भला है, पाठक एलन के भयानक अतीत का सामना करने की हिम्मत जुटा पाता है।
प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं ना। खाना, जहाँ प्यार और देखभाल है वहाँ अच्छा भोजन है।
पैसा, कंट्रोल, आजादी और अपनी मर्जी चला पाने का प्रतीक।
और नाम, पहचान का प्रतीक। अपना नाम बदलकर एलन फॉस्टर बनकर वो अपने अतीत को पीछे छोड़ एक नई पहचान गढ़ती है।
इस उपन्यास का जो भावनात्मक असर है वो बहुत गहरा है। आप पढ़ते हुए खौफ, दया, गुस्सा महसूस करते हैं और अंत में एलन के लिए गहरी प्रशंसा और सम्मान।
ये निराशा की कहानी नहीं है, ये उम्मीद और इंसान की, खासकर एक बच्चे की आत्मा की अदम्य शक्ति की कहानी है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार क्या है, ताकत क्या है, हमारी अपनी पहचान कैसे बनती है।
और वो असहज सवाल भी पीछे छोड़ जाती है, जब एलन ये सब झेल रही थी तो बाकी वयस्क, बाकी समाज कहाँ था, उनकी क्या जिम्मेदारी थी।
सच में ये कहानी सिखाती है कि सच्चा परिवार शायद खून के रिश्तों से नहीं बल्कि चुनाव से, प्यार और स्वीकृति से बनता है।
और ये भी कि इंसान की आत्मा में, खास तौर पर बच्चों में, सबसे भयानक तूफानों से भी गुजर जाने और अपना रास्ता खुद बनाने की एक हैरान कर देने वाली प्रेरणादायक ताकत होती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।